हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 56। ये श्लोक परिनिष्ठ भक्तों का वर्णन करता है, उनकी साधना कैसे होती है। मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवद गीता में है। पहले हैं सनिष्ठ, दूसरे हैं परिनिष्ठ और तीसरे हैं निरपेक्ष। सनिष्ठ भक्त लोग वर्णाश्रम के कर्मों में उनकी श्रद्धा होती है और उन कर्मों को वो भगवान को समर्पित करते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित नहीं करते। जैसे कि नहाना, नहाने को वो कृष्ण को समर्पित नहीं करते। वर्णाश्रम के अनुसार जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को स्वर्ग प्राप्ति की बजाय भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान को भगवान संतुष्ट हो इस भावना से करते हैं और धीरे धीरे उससे उनको ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के बाद वह भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते, ये हम चर्चा कर चुके थे अब तक। और आज हम लोग चर्चा करेंगे परिनिष्ठ भक्तों की। परिनिष्ठ भक्त, उनकी साधना है भक्ति और वर्णाश्रम के नियमों को उतना पालन करते हैं जितना उनसे होता है, बहुत जोर उस पर नहीं देते। और अद्भुत बात यह है कि आप जितने भक्त लोग यहां बैठे हो, कम से कम परिनिष्ठ तो हो ही, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आप सब लोग अनन्य भक्त हैं क्योंकि आपकी साधना भक्ति है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अच्छा लड़का बन करके, अच्छा पति बन करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा, या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बन करके फर्स्ट क्लास तरीके से मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब वस्तुतः जो ब्रह्मचारी हैं वे तो निरपेक्ष में आ गए। परिनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के नियमों का कदाचित जितना आवश्यक है उतना पालन करता है, लेकिन मुख्य रूप से वह भगवान की आराधना करता है। निरपेक्ष भक्त केवल भगवान की साधना करता, भक्ति करता है। तो जो इस्कॉन में ब्रह्मचारी हैं, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, वह निरपेक्ष में ही आ जाएंगे क्योंकि वो वर्णाश्रम का पालन ना करके केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारी इसमें आ जाएंगे, लेकिन गृहस्थ लोगों को कभी कभी कदाचित बाहर के सामान्य रीति का से कार्य करने पड़ते हैं, श्राद्ध मान लीजिए करना पड़ रहा है, पूजा करनी पड़ रही, तो उसमें उनका कोई अभिनिवेश नहीं है, मतलब उसमें श्रद्धा नहीं कि बहुत उसको करके मैं प्रगति करूंगा। वर्णाश्रम के नियम पालन होने चाहिए, बाहर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो तो मैं भी उसका पालन कर रहा हूं, लेकिन उनकी साधना क्या है? भक्ति। तो उसको हम आज देखेंगे। 25 श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे, आज हम लोग एक ही श्लोक का चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। तीनों लोग भगवत धाम जाने के क्वालिफाइड नहीं है। जब भगवत धाम जाने की, अच्छा ये प्रश्न है, भगवत धाम जाने की क्वालिफिकेशन है पराभक्ति। हाँ, तो क्रम से जब सनिष्ठ भक्त भक्ति योग पे आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा होता है, न सोचति न कांक्षति होता है, समा सर्वेषु भूतेषु होता है, भक्ति परा प्राप्त करता है, तब क्या लिखा था? विशते तदनंतरम, तब उस भक्ति के संग भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ठीक है, और यहां पे आज हम देखेंगे कि भगवान की कृपा से भक्त प्रगति करता है। बहुत स्पेशल, भगवान स्पेशली वहां ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यहां स्पेशली बोल रहे हैं मेरी कृपा से। वर्णाश्रम का ठीक से पालन ना भी कर पाए लेकिन अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करा, सारे कर्मों को, नहाना खाना पीना सब कुछ, तो फिर वह व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, सभी अनन्य भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे पीछे बोलिए, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, यहीं से शुद्ध भक्त कहना चालू कर दिया है। इसको एक जगह अन्यत्र भी पहले बलदेव विद्याभूषण जी समझा चुके हैं कि ये लोग अनन्य भक्त हैं, परिनिष्ठ और निरपेक्ष, ये दोनों अनन्य हैं और सनिष्ठ को अनन्य नहीं कहा जाता क्योंकि उसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है, न कि भगवान की शुद्ध भक्ति में। किसकी? कौन? सनिष्ठ कृष्ण के आपको अपने कर्म समर्पित करता है लेकिन सारे कर्म समर्पित नहीं करते हैं। वर्णाश्रम के जो नियम है वो पालन कर सकता है। अगर किसी देवता की उपासना भी कर रहा है तो इस संबंध से कि वे भगवान के अंग हैं, अलग नहीं है लेकिन भगवान के अंग हैं। लेकिन यहां पे सारे कर्म को कृष्ण को समर्पित करता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। पहली चीज, सभी कर्म का अर्थ क्या है हम गिनना चालू करें। स्नान करना, सोना, खाना, ये तो सामान्य कार्य हम रोज करते हैं, तो इन्हें कृष्ण को हम कैसे समर्पित करते हैं। इसमें लिखा है सदा। सदा मतलब सामान्य, हमेशा कर्म करते ही रहते, वो सारे कर्म कृष्ण के लिए हो जाते हैं। माइक के बोलिए, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि दशरथी प्रभु के पास माइक हो, पहले वो बोलेंगे। जिसके पास माइक वही स्पीकर।
जैसे ब्रह्मचारी हो या जो भक्त हैं, वो नहाते भी हैं तो मंगल आरती के लिए स्नान करते हैं, तो वो स्नान भी जो है वो उनके लिए, अपने लिए नहीं होके भगवान के लिए हो गया। और वो खाते भी हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और प्रसाद खाते हैं तो वो प्रसाद खाना भी हो गया। और ये सब कार्य करते करते अगर थक भी जाते हैं तो वो इसलिए सोते हैं ताकि वो फिर अगली बार उठ के अच्छी तरह से अपने आध्यात्मिक कार्य को कर सके।
परफेक्ट उत्तर, आप समझ पा रहे हैं। चाहे कुछ भी कार्य कर रहा है भक्त, चाहे वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ, उसका उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। और ये ध्यान देना चाहिए, एक मिस्टेक है, वो सोच रहे हैं प्रभु जी ने बोला कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ भी। घर में भी अगर मंगल आरती होती है, आप स्नान करते हैं, तो स्नान किस लिए कर रहे हैं? नेचुरली आपसे पूछो स्नान क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अरे आरती करनी है। और अन्यथा लोगों बोलेंगे आप क्यों स्नान कर रहे हैं, ऑफिस जाना है। तो बहुत अंतर है, इजंट इट? जो व्यक्ति स्नान कर रहा है ऑफिस जाने के लिए, उसका जो धन आता है वो भगवान को समर्पित करता है, वो कर्म योग है। लेकिन जो आरती करने के लिए भगवान की स्नान, भगवान की आरती करने के लिए स्नान कर रहा है, वो कर्म योग नहीं है, वो भक्ति है। इतना अंतर समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट भक्ति है, अनन्य भक्ति है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों को भगवान की कृपा का पात्र बना सकते हैं। केवल आप सुबह मंगल आरती करिए, बस केवल मंगल आरती करने मात्र से जो आपका स्नान है वह कृष्ण को अर्पित कर्म हो जाता है। मेक सेंस? बहुत महत्वपूर्ण है। और कुर्बानो मद व्यापाश रहे, भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की भक्ति की शरण लेते हैं। उनको विश्वास है मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इस कारण से भक्ति के इतर, मतलब वर्णाश्रम के कुछ चीजें अगर डिस्टर्ब भी हो जाती हैं तो उन्हें कोई भय नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने की वजह से वर्णाश्रम के नियम कुछ ढीले पड़ जा रहे हैं तो उसमें कोई उनको डर नहीं होता है। आप लोग को श्लोक याद आ रहा है? वो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्वावद्रवुश अभूदमुश्य किम कुवार्थ आप्तो भजताम सुधर्मतः। तो नारद मुनि इस बात को बोल रहे हैं कि स्वधर्म को त्याग करके कृष्ण की शरण लेता है और उसका पतन भी हो जाए तो उसका नुकसान क्या है, और अपना स्वधर्म बढ़िया से पालन किया तो उसका फायदा क्या है। बड़े स्टाइल से नारद मुनि बोलते हैं। तो यानी कि इस प्रकार के विश्वास कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस तरह से भगवान की शरण लेते हुए भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मत प्रसादात अवापनति, तो मेरी शरण ले रहे हैं तो मेरी कृपा से भगवान के धाम जाएंगे। आप कैसे जाएंगे भगवान के धाम? भगवान की कृपा से। हमें पता नहीं हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? भगवान की कृपा से। वो कैसे लेके जाएंगे? कोई मुझसे पूछ रहा था विमान आता है कि क्या आता है, हमें पता नहीं विमान आता है कि भगवान आते हैं, उससे को मतलब नहीं, भगवान की कृपा से पहुंच जाएंगे। हमेशा विमान नहीं आता। गोप कुमार मंत्र को उच्चारण कर रहे थे, उसी से पहुंच जाते थे वो। ऐसा नहीं कि विमान ही आएगा, ठीक है, कैसे भी जाएंगे पहुंच जाएंगे, हमें पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, कृपा से पहुंच जाएंगे। और कहां पहुंचेंगे? शाश्वतम पदम अव्ययम, वो स्थान जो है भगवान का शाश्वत धाम है और शाश्वत पद समझते हैं, और जो कि अविनाशी है। टीका हम पढ़ रहे हैं, टीका अपने फोन में देखिएगा। यहां ढाई श्लोकों में, हम खाली एक ही श्लोक पढ़ेंगे, ढाई श्लोक आगे, अगला श्लोक कल आएगा, जब भी आएगा। यहां ढाई श्लोकों में परिनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन भगवान कर रहे हैं। फिर से याद कीजिए, सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना, कृष्ण के और सबके वर्णाश्रम वाले कार्य जो कुछ भी है सब कृष्ण को समर्पित करना, और भगवान का आश्रित होना, और भगवान की कृपा से भगवान के धाम। बेसिकली साधना केवल दो ही है, भगवान का आश्रय लेना और सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना, और कृपा तो उनकी तरफ से आएगी, ठीक है। वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है। नियत कर्म का अर्थ है वर्णाश्रम के कर्मों को उतना महत्व नहीं देता। जहां तक वह सरलता से किए जा सकते हैं, मतलब जितना आसानी से किया जा सकता है उतना वह करता है। यह अपि शब्द से इंगित होता है। सर्व क्या था? सर्व कर्माण्य अपि, अपि मतलब जितना होता है उतना, जितना बनता है वो करते हैं। अब देखेंगे जब आप लोगों को प्रचार करें तो उनको बोलो कितना माला करते हो, जितनी बनती है उतना करते हैं। लेकिन साधक भक्त लोग ऐसा नहीं बोलते, जितनी बनती है उतना करते, जितना बना सके उतना करते। और आप देखेंगे कि बाकी सारी चीजों में उतना नेग्लेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति बोल रहे थे, लेक्चर में बोल रहे हैं कि ये लोग की विश्वास कृष्ण में बहुत है, भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कदाचित अगर उनका रूम गंदा रहता है या कुछ थोड़ा कपड़ा साफ नहीं है तो उसमें दोष मत निकालिए। उनका विश्वास कृष्ण में है, बाकी सारी जो भौतिक चीजें हैं उस पर इतना आप दोष मत निकालिए। देखिए कि क्या उसका कृष्ण पे सहज सदृढ़ विश्वास है कि नहीं, क्या वो हर कर्म को कृष्ण को दे रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वह एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेता है, मद व्यपाश रहा, तो स्पष्ट है कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। और यह उसका मुख्य कार्य होता है, मतलब कृष्ण की शरण लेता है और इन जिन कार्यों से कृष्ण की शरण ग्रहण की जाते हैं उनमें अधिक या उसको प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटाइज का मतलब कितना है? प्रमुखता, अपने जीवन में मुख्यता देता है। जप करना, भागवत पढ़ना, भक्ति करना, आरती करना, ये मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। और इस प्रकार भगवान की परम कृपा यानी मत प्रसादात मेरी कृपा से उनके शाश्वत धाम यानी पदम को प्राप्त करता है जो नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। अब आप देखिए क्या भगवद गीता आपको भगवान के धाम जाने का एक विज्ञान नहीं बता रही? दूसरी चीज, क्या इस श्लोक में भगवान का प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के रूप में ही देखते? जैसे अभी मैं कुछ देर पहले भक्तों को बता रहा था कि जुखाम की दवा है एलियन सेपा, बहुत अच्छी दवा है, मैं ठीक हुआ हूं। अच्छा, मुझसे पहले और लोग ठीक हुए हैं, बहवा हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं और आगे भी होंगे, है ना। तो जब यहां भगवान बोल रहे हैं कि लेते हैं, क्या शब्द है, एक मिनट रुकिए वापस, आपनोति का अर्थ क्या है? करता है, मतलब एक ही आदमी किया है। अगर बोला जाए कि एक ही आदमी किया था तो क्या शब्द आएगा? किसी को संस्कृत पता है? आपनोता होता, क्या होता? एक ही व्यक्ति प्राप्त किया, मेरे ध्यान को एक ही व्यक्ति प्राप्त किया, आपनोता होता। और आपनोती का मतलब करता है, मतलब जो व्यक्ति इस दवा को लेगा वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब बहुत से लोगों ने पहले किया, वो ठीक हुए थे, अभी जो लोग ले रहे हैं दवा को वो ठीक हो गए, हो रहे हैं, और जो आगे लेंगे वह भी ठीक हो जाएंगे। मेक सेंस? तो उसी प्रकार से भगवान ये बोल रहे हैं कि ये चीज घटना आपके संग पहली बार होगी, है ना मोहन? आप पहली बार जाओगे ना भगवत धाम, है कि नहीं ललित मोहन? आप पहली बार जाएंगे ना? पहले से आए थे आप, गोलोक से आए है ना? हम लोग तो पहली बार जाएंगे तो हमको डाउट लगता है, अरे सिर्फ कैसे जाएंगे, हम तो बहुत बंधन में है, ये है फलाना, लेकिन भगवान तो बहुत बार देख चुके हैं ना। तो भगवान आपको श्योर शॉट वैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं कैसे भगवान के पास जाना है। दो ही चीज करनी है, सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना है, यानी कि मन, और शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, फिर से आ जाते हैं हम लोग। हमारे अनुपम कृष्ण को हम एग्जाम लेंगे क्योंकि हमने इनसे पहले पूछा था तत्पर का अर्थ बताइए। तत्पर का अर्थ हमने आपको ग्रुप में भी भेजा था, तत्पर का अर्थ आपने बताया था, उसको रिपीट कीजिए। हाँ रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, गलत भी रिकॉर्डिंग होगा तो कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं आएगा उसमें, अनुपम कृष्ण नाम नहीं आएगा। हाँ, बोलिए तत्पर का अर्थ क्या है? कोई बात नहीं, गलत बोलने से मैं हेल्प करूंगा आपकी।
तत्पर मतलब लगे रहना,
बस सही बोला आपने। तत्पर मतलब वाणी से, मन से, शरीर से कृष्ण को की सेवा करते रहना, कृष्ण को परम लक्ष्य मानते हुए। आप उसको 5-6 अर्थ देखिएगा जो मैंने पोस्ट किया, बहुत सुंदर था। तत् मतलब कृष्ण, कृष्ण को ही मेरा जीवन का परम लक्ष्य मान करके, जैसे आईएएस का व्यक्ति क्लर्क के एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, समझ में आ गया? इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। आईएएस का व्यक्ति क्या सोचता है? आईएएस की तैयारी करने वाला यही मानता है ना, बिहार से बहुत लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते हैं, तो वो क्या मानते हैं? आईएएस ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। क्यों, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना आईआईटी में पहुंचना है, तब तो नहीं सोच रहे थे भगवत धाम जाना है। आप अपनी चेतना को मैं वापस चले जाइए 2 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाना कि आईआईटी ही जाना है, था कि नहीं? हाँ, अरे तो हर चीज में आप शर्मा जाते हो। हाँ, और कुछ दिखता ही नहीं था। जिन लोगों को केवल आईआईटी ही दिखता है वही आईआईटी में दिखते हैं, टाइम पास वालों को नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार से भक्त को ये परनिष्ठ भक्त खाली कृष्ण ही देखते हैं, कृष्ण का धाम, कृष्ण की कृपा, कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण। तो मन से वाणी से कर्मों से कृष्ण को सेवा करना, ये भावना है। और बाकी जो कुछ करना है वो जल्दी जल्दी कर देना, ऐसे ही बस हो जाएगी किसी तरह से। तो ये बात बोल रहे हैं, इस प्रकार से कृष्ण की कृपा मिलेगी। कुछ पूछ रहे हैं? यस, माइक दीजिए उनको।
आप बोल रहे थे कि पहली बार जाएंगे हम लोग भगवत धाम, मतलब कि इसके पहले तो बोला था कि माया के द्वारा हम लोग भगवान से विमुख होके आए हैं यहाँ पे।
अब उसको हम बाद में उत्तर देंगे, लंबा सब्जेक्ट मैटर है, हमारे पास खाली 20 मिनट है। सिंपल शब्दों में अनादि काल से हम जगत में हैं, भगवत धाम से आनी आए। इस संबंध में वेदांत में उक्ति है कि सर्वथापि तत्र वो भय लिंगात, एक परनिष्ठ भक्त हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में। स्पष्ट है, बार बार हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसका श्रुति और स्मृति शास्त्र, क्योंकि इसको श्रुति और स्मृति शास्त्रों में इंगित किया गया है। तात्पर्य पढ़िए, आपके पास भगवद गीता है, पढ़ना चाहेंगे, जिसके पास भी है आनंद कृष्ण कोई भी पढ़े, अच्छे से पढ़ लीजिए जो पढ़ना जानते हैं, जल्दी से पढ़िए। तात्पर्य,
मद व्याप श्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में।
एक इसका अर्थ समझ लीजिए, जैसा परमेश्वर कृष्ण बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो भगवान का संरक्षण मिलेगा, समझ में आता है? क्योंकि परमेश्वर का संरक्षण स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, कृष्ण का संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? ये समझ में आता है कि धर्म रक्षति इति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, कौन रक्षा करेगा? कृष्ण करेंगे। समझ में आ रहा है? जो धर्म के पालन कर रहा है वो धर्म को, कौन है व्यक्ति जो धर्म को रक्षा करेगा? हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण करेंगे, भगवान करेंगे। तो यानी भगवान के संरक्षण में, अर्थात भगवान की आज्ञा के संरक्षण में भागवत धर्म का अनुशीलन करते हुए उसके द्वारा भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कोई नाम जप करता है तो भगवान क्या सोचते हैं? मरने दो उसको, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, एग्जाम लेते हैं अनंत अनंत कृष्ण प्रभु, और कोटेशन भी देना आपको, क्या सोचते हैं भगवान?
ऐसे भगवान ही सोचते हैं, मेरा मेरे मेरा जन, मतलब अपने संबंध में से संबंधित। हाँ,
और श्लोक याद है लास्ट वाला पार्ट, एतद विषयः मति, भगवान की ऐसी मति होती है कि व्यक्ति मेरा है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो संरक्षण का अर्थ क्या सीखा आपने? भक्ति करके, भक्ति करके ही मैं भगवान का संरक्षण प्राप्त करूंगा, ये निष्ठा उसकी होती है। बढ़िया, भगवान की प्रोटेक्शन कैसे संभव है? जैसे अजामिल को बचाए नरक से जाने में, और इतना सारा दुख आना होता है तो थोड़ा सा देते हैं। आपका हृदय कितनी बार धड़का है जब से आप क्लास में आए? उत्तर हो गया? कोई तो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम लोग पागल नहीं हो रहे हैं सुबह उठ करके? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक असिस्टेंट थे, वो कहे, आप सब जानते होंगे अरविंद स्वरूप नाम था ना, क्या नहीं अरविंद स्वरूप नहीं था, क्या नाम था, अरविंद करके था ना। तो शादी वादी करवा दी बच्चे की, उसके बाद अब मैं भजन करूंगा, कर भी रहे थे कुछ कुछ, और बस हार्ट अटैक आया, सब समाप्त। लेकिन वृंदावन में शरीर त्याग, प्रोटेक्शन है नहीं है? ठीक है, सुरभि प्रभु जिन्होंने मंदिर बनाया था वो पहले सन्यासी थे, फिर वो सन्यास से उनका पतन हो गया जो भी है, और उसके बाद वो 40 साल के लिए जापान में ही कुछ कुछ करते रहे, बहुत पैसे कमाए, और जस्ट मृत्यु के पहले यहां पे आ गए और शरीर त्याग दिया। प्रोटेक्शन है नहीं है? तो इसलिए भगवान की कृपा असीमित है, और भगवान की कृपा आप कभी समझ नहीं सकते, भगवान स्वयं बोलते हैं इसको, 10:88:10 उसको पढ़ सकते हैं, इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी समझ नहीं सकते। रेफरेंस आप लोग को मैंने दे दिया, पढ़िए पढ़िए।
भौतिक कलमस से
जैसे जिस स्थान पे हम बैठे हैं वो किससे श्रेष्ठ है? दशरथी प्रभु का एग्जाम लिया जा रहा है, उपदेशामृत में थे आप, जिस स्थान पे आप बैठे हैं वो किससे श्रेष्ठ है? प्रॉम्प्ट करते हो, धर्म की सभा में धर्म करते हो। हाँ,
वृंदावन जो है मथुरा से श्रेष्ठ है।
हाँ,
और मथुरा जो है वो गोवर्धन से श्रेष्ठ है।
सॉरी, उल्टा कर दिया। यस, पार्थ प्रभु बताएंगे, परिक्रमा इंचार्ज। यस,
इस भूमंडल में मथुरा मंडल सबसे श्रेष्ठ है।
नहीं,
मथुरा मंडल
थोड़ा मिस्टेक किया आपने, थोड़ा मिस्टेक किया।
नहीं, उसके बाद सुनिए ना, मथुरा मंडल
नहीं, मथुरा जिससे आपने कंपेयर किया वो ठीक नहीं किया। मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है।
अच्छा,
वैकुंठात क्या है मथुरा? मेरे मुंह से नहीं शब्द अभी श्लोक नहीं निकल रहा है, लेकिन वैकुंठात जनित वराह मद, मधुपुरी तत्रापि रासो सवात, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप सोचेंगे अरे मैं गोलोक ना पहुंचू, वैकुंठ पहुंच जाऊं, कॉन्सोलेशन प्राइस ही मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान में हम बैठे हुए। तो क्या समझ पा रहे हैं आप उसको? नहीं समझ पा रहे। और ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों है, ये भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो परमेश्वर का कृष्ण का संरक्षण मिलता है। और बाकी लोग क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? बाकी क्यों भाग रहे हैं यहां से? समझ गए ना? भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं व्यपाश्रय का। व्यपाश्रय का अर्थ है भगवान के, ये भगवान शुक के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करना, ये अर्थ होता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 2400 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। अर्थात जैसा भगवान चाहते हैं वैसे करता है। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान उससे खुश होते हैं, तो उन्हीं कार्यों में लगना चाहिए जिससे भगवान सुखी होते हैं। बहुत इजी है ना समझना और करना? करना मुश्किल है क्योंकि हम चाहते हैं अरे कोई मेरे लिए भी टाइम होना चाहिए ना, है ना, सोचते हैं ना, कोई टाइम अपने लिए नहीं, सब कृष्ण के लिए। सो भी रहे हैं जैसे प्रभु जी ने बताया तो केवल इसीलिए ताकि हम शरीर में शक्ति प्राप्त करके फिर कृष्ण की सेवा में कर सकें। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कोई एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं है? तो कहे प्रभुपाद बोले सुबह से शाम तक कृष्ण भावना में एंटरटेनमेंट ही तो है। प्रसाद खाओ, जप करो, कीर्तन करो, गाओ, नाचो, कथा सुनो, तो उसमें एंटरटेनमेंट के अलावा है क्या? और शुरुआत में भक्त नहीं समझ पाते लेकिन ऐसा होता है। जैसे प्रद्युम्न मिश्रा को जब रामानंद राय से कथा सुनने को मिला तो सुबह से शाम हो गई और उनको बोला कि अरे शाम का समय हो गया, प्रसाद का समय हो गया, फिर वो नाचने लगे। इतने कह रहे अरे मुझे इतना अच्छा कथा सुनने को मिला, नाच रहे हैं ऐसे करके, तो इतना उनको सुख मिल रहा है। हाँ धीरे धीरे हम लोगों को भी होगा। ठीक है, ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है भगवान अत्यधिक दयालु रहते हैं। मेरी मैं उसकी टीका भूल गया हूं लेकिन वो श्लोक बड़ा सुंदर है। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुरम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। टीका में पूरा पूरा याद नहीं है, हम अगले से बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। कैसे परमात्मा के रूप में तो भगवान रहते हैं तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि कान के द्वारा कृष्ण प्रवेश करते हैं? अभी इसका प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा जब भी क्लास देंगे कि क्या अंतर है। परमात्मा के रूप में इतना मुझे याद आ रहा है, परमात्मा के रूप में वो न्यूट्रल रहते हैं लेकिन भगवान के रूप में प्रेरणा देते हैं, ये काम करो इसे तुम मेरे पास आओगे। और ये समझ में आने लगता है कि कौन से काम करने से मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। जैसे अमृत मंथन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, उसी प्रकार से भक्त के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। आप लोग लगता है कि जीवन में कुछ कठिनाई आती है? एक बहुत बड़ी कठिनाई है, चपाती कच्ची रह जाती है। ये क्या बहुत बड़ी कठिनाई है? नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कठिनाई आती है। कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना ललित में, हाँ, कभी कभी टांग दर्द करती है, कभी कुछ और परेशानियां आती हैं, कभी मेरा मन अच्छा नहीं होता। ऐसा केवल ऐसा नहीं आप लोगों का मजाक बन रहा है, मेरे संग भी होता है, शरीर की, मन की, और कभी कभी परिवार वाले परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से कठिनाई आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद अंत तो गत्वा वह भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन फ्री में नहीं जाएगा, 16 माला करना ही है, उसे 4 नियम का पालन करना ही है, तब पहुंच जाएंगे। मरते समय चाहे हम यशस्वी हुए कि नहीं हुए, हम पढ़ाई कर पाए कि नहीं कर पाए, हम महान बने कि नहीं बने, भगवत धाम पहुंच गए तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। बहुत बढ़िया होता है जब सारी जो समाप्ति है बहुत बढ़िया होती। तो ये भगवत कृपा से होता है, कैसे होता है पता नहीं। और ध्यान देना चाहिए जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं वो कृष्ण ही दे रहे हैं भक्त के जीवन। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर वहां पे एक चीज में यहां पे नहीं लिखा हुआ है, स्पेशल टीका है मेरी, अगर वहां पे फ्लैट अवेलेबल हो तो आप मान लीजिए भगवत धाम जाने के योग्य हो भी जाएं, लेकिन अगर वहां पे फ्लैट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको एक जन्म और रुकना पड़ेगा, है ना दशरथ जी प्रभु? क्या मत है आपका इसके बारे में? क्या कहना चाहते कोई? कुछ नहीं कहना चाहता, यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है, फ्लैट अवेलेबल नहीं होता, बुकिंग करानी पड़ती है, क्या है वहां पर?
हमारा अगर हम भक्ति करेंगे तो फ्लैट अवेलेबल ही होगा भगवान की।
नया बनाएंगे आपके लिए,
वो सदा सर्वदा
जानबूझ के बोला था, नया बनवाएंगे आपके लिए। गुरु कृपा प्रभु को प्रभुपाद ने बोला तुम यहाँ भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो, कृष्ण गोलोक में तुम्हारा घर बनवा रहे हैं और मैं देख सकता हूँ उसको। तो हम इतने महान आचार्य के संरक्षण में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने न्याय बनवा देंगे, फर्स्ट क्लास बना। कृष्ण के लिए कोई कमी नहीं, जैसे पुष्पक विमान था ना, जितने लोग आ जाएंगे फिर भी एक स्थान खाली रहता, तो कोई कंपटीशन नहीं है। अभी तो जितने लोगों की मदद करेंगे उतना आपकी सीट और रिजर्व हो जाएगी, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई द्वेष करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वस्तुतः भक्त को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम भक्तों से तो बिल्कुल नहीं है। सबको भगवान के धाम जाना है। और पता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अनुपम कृष्ण प्रभु और मोहन का झगड़ा होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नहीं होगा, भगवान ना करे कभी हो, और आप दोनों लोग भगवान भगवत धाम पहुंच गए, फिर आप कहेंगे अरे यार क्या तुम लोग लड़ाई कर रहे थे, हम लोग बेगुफी की बात पर लड़ाई कर रहे थे। आज मैं सोचा तो मुझे मतलब हंसी आ रही थी, मान लो दो भक्त लड़ रहे हैं और दोनों भगवत धाम पहुंच गए, फिर कहेंगे अरे देखो हम लोग क्या स्वप्न में अपने को शरीर मान रहे थे और आपस में झगड़ा कर रहे थे। आप लोग तो झगड़ा नहीं करते हैं, कभी सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है, ना आप इनको देख सकते हैं ना आप उनको देख सकते हैं और दूसरे की निंदा चालू होती है, लड़ाई करते हैं, लेकिन बेवकूफी की बात है, दोनों लोग भगवत धाम जा रहे हैं, दोनों को जाना है, आपको कहाँ जाना है, गोलोक, आपको कहाँ जाना है, गोलोक, और वहां को आगे कौन सा झगड़ा करना है, तो यहाँ झगड़ा करने की क्या जरूरत है। आप लोग करते नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब भी भक्त लोग झगड़ा करते हैं कोई जरूरत नहीं, कोई कारण नहीं है, बस अपना गोल फिक्स होना चाहिए कि मैं भगवान के धाम जाना, और सबके लिए सीट है। सिन्हा जी आपके लिए सीट है, कन्फर्म्ड है, यस। आपने वो चूहे मारने की दवा मिलाई थी मिठाई में इस बार, नहीं मिलाते हो? तो जहर, जब जहर देने वाली माँ बन गई तो आप तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे। ये बस याद रखना चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नहीं काम, हर चीज कृष्ण नोट करते हैं, यस। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं, उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती। एक आप लोगों की गलत धारणा हो सकती है कि कोई वस्तु जैसी दिखेगी बस वैसे ही दिखती रहेगी, ऐसा नहीं होता। कोई फूल है तो वो मतलब डिग्रेड नहीं होता है, लेकिन वो और सुंदर होता जाता है। कृष्ण के डिग्रेड होने का तो मतलब नहीं है, अनादि काल से सुंदर हैं और उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। कृष्ण को गोपियां देखती हैं तो उनको बड़ा प्रेम बढ़ता है, तो कृष्ण और सुंदर दिखते हैं, फिर उनको सुंदर देखकर कृष्ण गोपियों को और खुशी होती है, उनको और प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण और सुंदर दिखते हैं, फिर उनको देख के और प्रेम बढ़ता है तो और सुंदर दिखते हैं। तो कॉम्पिटिशन चल रहा है गोपियों के प्रेम में और कृष्ण की सुंदरता में, कब खत्म होगा, कभी नहीं। तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसा स्थान कहाँ होगा। तो ये सब सुनने से बड़ा आनंद आता है और लालसा होती है बस हम भगवान के धाम पहुंच जाएं और दो चार पांच सौ लोगों को साथ में लेके पहुंच जाएं, है ना मोहन? आप मान लो पहुंच गए, भगवान कहते बेटा अकेले आए, हाँ मैं अकेले आया, प्रचार नहीं किया, नहीं प्रचार उचार नहीं, मैं अकेले आ गया, मैं आ गया, खुद कर लिया बहुत है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें स्वयं भी जाना चाहिए और सब भक्तों को जितने लोग हम बता सके, हो सकता है वो भी अच्छे से भक्ति करें और वो भी भगवान के धाम चले जाए। बहुत सुंदर श्लोक था इसलिए मैंने इसको लिया, कोई प्रश्न है तो हम दे सकते हैं। यस, माइक दीजिए।
थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ सन्निष्ठ और परिनिष्ठ में, थोड़ा सा इसमें, जैसे कि आपने कहा कि ये लोग वर्णाश्रम तो ठीक है लेकिन ये अनन्य भक्त नहीं होते। अनन्य का जो मैं मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ये कि वो किसी और की नहीं सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं, ना अन्य इज गोस टू अनन्य।
नहीं, लेकिन अनन्य का अर्थ है साधन क्या पकड़ रहे,
साधन मतलब है, देवी देवता को अप्रोच नहीं करते वो लोग। तो ये सन्निष्ठ लोग क्या देवी देवता पास जाते हैं?
वरना उनकी जो वो सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित नहीं करते, केवल वर्णाश्रम के कर्म, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण की अर्पित कर रहे हैं, ये सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित नहीं करते। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ। जैसे आप देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमने सुबह पूजा कर ली ना, अब बाकी काम हम अपने लिए करेंगे, ऐसे हैं लोग। एक भक्त है, उनके पिताजी बोले अरे सुबह पूजा कर ली ना, अब दिन भर क्या पूजा करते रहना, कि दिन भर हरे कृष्ण क्या करना
है। सारे कर्मों को जैसे मान
लीजिए, जैसे एक बहुत अच्छा टैक्स पेयर गवर्नमेंट को अपना टैक्स देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे प्रेम करता है। समझ पा रहे हैं अंतर? बिल्कुल नियम से, कोई चोरी नहीं कर रहा, बढ़िया से टैक्स दे रहा, सब कुछ कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रेम करूं। तो सन्निष्ठ भक्त ग्रेजुअली पहले कर्मयोग करता है, फिर ज्ञान योग पे आएगा, फिर अष्टांग योग पे आएगा, फिर धीरे धीरे क्रमशः विकास करते हुए भक्ति पे आता है।
सकाम कर्म योगी होते हैं
तो? नहीं, सकाम नहीं है, सकाम नहीं है वो, अपने कर्मों को अब हमने खूब क्लियरली देखा था, कर्मों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, सनिष्ठ भक्त भगवान को ही दे रहा है, लेकिन वही जो केवल यज्ञ इत्यादि जो पूजा प्रॉपरली पूजा पाठ है बस वही दे रहा है, हर कर्म को कृष्ण के लिए नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि वो कृष्ण के लिए सो रहा है। यस, प्रश्न कर रहे हो, बताना चाहते हैं।
स्वनिष्ठ तो टेक्निकली कर्मनिष्ठ भक्त
है। यस, कर्मनिष्ठ भक्त, उसकी निष्ठा जो है वो कर्म में बहुत है, वर्णाश्रम धर्म में बहुत है, भक्ति में उतनी निष्ठा नहीं है, उतनी निष्ठा नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सिंपल सी बात है कि अरे मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो ये डर नहीं है यहाँ के आपके परिनिष्ठ को, जितना समय मिलेगा उतना करूंगा, ऐसा नहीं कि उसको करना है, उसे नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मेरे साधन में कमी आएगी, ये भावना नहीं है। हाँ, श्रद्धा बहुत अच्छा उन्होंने बोला, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो, ये शुद्ध इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति श्रद्धा, भक्ति मेरा गोल है और भक्ति करना, और इसको आप कह सकते हैं सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्म को कर्म बंध से मुक्त होने के लिए कृष्ण को समर्पित कर देता है, लेकिन ये अलग प्रकार की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए उद्देश्य से अनन्य भक्ति की जाती है।
जनक महाराज आते हैं एग्जांपल रोज प्राणिष्ठ,
और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं देखिए वो रुक जाएगा, जिस स्तर पे वो है उस तरह पे चलेगा। आज भी महाराज समझा रहे थे वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है धीरे धीरे करके, फिर वह आगे बढ़ता है। लेकिन आपको याद हो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, ए तो बाह्य है, ये तो एक्सटर्नल है, क्योंकि रियली भगवान के प्रति प्रेम मुख्य उद्देश्य नहीं। और क्या बोला था जाने प्रयासे वाले श्लोक में कि श्रवण कीर्तन उनका मुख्य अभ्यास होता है, जिसके द्वारा भगवत प्रेम का विकास करना उनका उद्देश्य होता है, तो उसको महाप्रभु बोलते हैं ए तो है, ये सही साधन है, तो ये मुख्य तरीका है जिसके द्वारा वे भगवान को जीतते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करते हैं। तो श्रवण कीर्तन पूजन स्मरण ये सब जो है, जो नवदा भक्ति है, ये उनका मुख्य साधना होता है, और वर्णाश्रम कदाचित करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि समाज में वर्णाश्रम डिस्टर्ब नहीं हो बस, लेकिन इनका ये विश्वास नहीं है कि मैं वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके भगवत प्राप्ति करूंगा। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्री